पृष्ठ संख्या 168, वैधानिक क्षेत्र में स्त्री असमानता, डॉक्टर कमला गुप्ता, सह प्राध्यापक स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारतीय कानून व्यवस्था धार्मिक संहिताओं पर आधारित थी। ये धार्मिक संहिताएं अलग अलग क्षेत्रों, जातियों तथा धर्मावलंबियों के लिए अलग अलग थी और पूरे देश में प्रचलित धार्मिक कानूनों में एक रूपता नहीं थी। इस प्रकार की विविधता से अंग्रेज वाकिफ नहीं थे, अतः उन्हें शासन चलाने में कठिनाई आ रही थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 से 1780 के बीच कई कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रियों की सहायता से धर्मशास्त्रों के आधार पर हिंदू कानून संहिता को संकलित करने का प्रयास किया। पंडितों को इस काम में लगाया गया। 1975 में यह संहिता संस्कृत में तैयार हुई। बाद में इसका पारसी और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इंग्लैंड में इसे अकोड ऑफ गेंट लॉज शीर्षक में छापा गया। हिंदू कानून का यह सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत माना जाने लगा। शास्त्रों ने इसे देश के सुदूर क्षेत्रों में भी व्यभिचार, विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार तथा स्त्री के कर्तव्यों के मामलों में लागू करना आरंभ कर दिया। लेकिन हिंदू कानून में अंग्रेज शासक और न्यायाधीश तो निश्चितता लाने की कोशिश कर रहे थे। वह 1947 के बाद संसद तथा राज्य सभाओं में पारित हिंदू कानून कोड बनने के बाद आई। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 में समानता के अधिकार की सीमाएं तो निर्धारित करते हैं, परंतु इसके अंतर्गत समानता को परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वमान्य परिभाषा के अलावा अलग अलग समय में इसका क्षेत्र संकुचित रहा है। मोटे तौर पर समानता को औपचारिक और व्यापारिक दो रूपों में परिभाषित किया गया है। औपचारिक समानता समान परिस्थितियों में समान कानून बनाने पर सीमित होती है, जबकि वास्तविक समानता की स्थिति लाने के लिए हर प्रकार की असमानता को समाप्त करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्तरों पर कमजोर वर्गों के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित भेदभाव को समाप्त करना आवश्यक होता है। राज्य को इन वर्गों को वे सब सुविधाएं देनी पड़ती हैं जो समाज के संभ्रांत वर्गों को उपलब्ध है। समाज नागरिक संहिता पर होने वाली बहस जनचेतना के स्तर पर नारीवादी मुद्दे के रूप में नहीं समझी गई। इसकी जरूरत को न्यायपालिका ने केवल राष्ट्रीय अखंडता की दृष्टि से रेखांकित किया है। दूसरी तरफ समाज नागरिक संहिता का प्रतिशोध करने वाले नागरिक सामुदायिक नेताओं की नज़र में यह अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक अस्मिता को नष्ट कर देगा, जिसका संरक्षण लोकतंत्र का आधार है। इसलिए समान नागरिक संहिता पर होने वाली बहस राज्य और समुदायों के इर्द गिर्द ही केंद्रित होकर रह गई है और इसमें लैंगिक न्याय का सवाल लुप्त हो गया है। रत्ना कपूर तथा उनकी सहयोगियों ने संविधान के स्त्री संरक्षण संबंधी अनुच्छेदों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने सबवर्सिव साइट्स नामक पुस्तक में संविधान में दिए गए समानता के मूल अधिकार को तथा परिवारवादी अवधारणा के संदर्भ में परखा है। उनका मानना है कि समानता का औपचारिक दृष्टिकोण लिंग संबंधी मित्रता से प्रभावित है। संविधान के अनुच्छेद 15(3) में इसका उल्लेख है। संविधान में पितृसत्ता को स्त्री समानता की राह में रोड़ा ना मानकर एक नैसर्गिक संस्था के रूप में लिया गया है। यह पितृसत्तात्मक विचारधारा भारत में ही नहीं विश्व की संवैधानिक व्यवस्थाओं में सर्वत्र विद्यमान है। हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार का दावा करना भी एक तरह से लोगों को भ्रमित करना है। इसे सिर्फ लिपिबद्ध किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट और गार्जियनशिप एक्ट तथा हिंदू एडिशन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिन्हें नेहरू ने पारित कराया, महिलाओं के अधिकारों की ओर एक संपूर्ण कदम नहीं था, बल्कि विधिवद्धता के जरिए हिंदू कानून में व्याप्त भिन्नता को समाप्त किया गया, जिसके कारण हिंदू लॉ के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जो अधिक उदार नियम थे वे भी नष्ट हो गए। उदाहरणार्थ, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को बार बार पीड़ित स्त्रियां संविधान के अनुच्छेद 14 का विरोधी बता रही थी। कारण, व्यवहार में पति ही अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए इसका दुरुपयोग करता था और यह दुरुपयोग सामाजिक असमानता के वजह से संभव है। हिंदू विवाह कानून में दोनों को तलाक का अधिकार है, लेकिन पत्नी को व्यभिचारिणी हो जाने पर उसके गुजारे भत्ते का अधिकार समाप्त हो जाता है। आदर्श पत्नी के मापदंडों के आधार पर पत्नी को व्यभिचारिणी सिद्ध करना आसान हो जाता है। क्रूरता निश्चित करने के मामले में स्त्री और पुरुष को अलग अलग मापदंडों से जांचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता को शारीरिक और मानसिक दोनों माना है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्रूरता का निर्धारण हर केस के सामाजिक शैक्षणिक स्तर के आधार पर होना चाहिए। पुरुष पत्नी पर आदर्श पत्नी न होने का आरोप लगाकर या क्रूरता के आधार पर तलाक ले लेता है। यदि पत्नी का मंगलसूत्र नहीं पहनना या परिवार के परिजनों के साथ रिश्ता नहीं निभाना क्रूरता माना गया है। इस प्रकार क्रूरता का मापदंड भी पारंपरिक आदर्श पत्नी के मापदंडों के आधार पर ही निर्धारित होता है। दाम्पत्य अधिकारों के से संबंधित हिंदू विवाह कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 का विरोधी बताते हुए बार बार न्यायालय में चुनौती दी गई है। न्यायालय में माना गया है कि सतही तौर पर यह उपचार दोनों पति पत्नी को उपलब्ध है, अतः इससे समानता के मूल अधिकार का हनन नहीं होता। परंतु व्यवहार में पति ही इस अधिकार का उपयोग पत्नी को दबाने के लिए करते हैं। इस प्रकार वास्तव में इसका लाभ पति ही लेता है, पत्नी पर तो इसका प्रभाव नकारात्मक ही होता है। इस प्रकार समानता के मूल अधिकार को केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित रखकर परिवार में स्त्री के गौण दर्जे को अदालत में न्यायिक मान्यता दे दी है। महिलाओं के संरक्षण देने वाले सभी कानूनों में शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल दहेज विरोधी कानून को अमल में लाना है। यह कानून 1961 में बना। पूरे देश में महिलाओं के दहेज विरोधी आंदोलन की वजह से 1984 में संशोधन किया गया। इस कानून में दहेज पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन वर वधु को कुछ सामान्य उपहार में छूट दी गई। 1985 में बने दहेज निरोधक कानून के मुताबिक वधु के परिवार की सूची उनके संक्षिप्त ब्यौरों अनुमानित कीमत के साथ अपने पास रखनी होती है। सूची पर वर वधु दोनों दस्तखत करते हैं। हालांकि दहेज लेना और देना दोनों अपराध माने जाते हैं, पर तब भी अगर पति या उसके परिवार वाले दहेज के लिए किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो भी लोग कानूनी कार्रवाई करने से हिचकते हैं। दहेज हत्या या मारपीट या पत्नी की हत्या के दूसरे मामले में पड़ोसी या रिश्तेदार मारपीट की गवाही नहीं देते। कभी कभार जब वे गवाही देते भी हैं तो न्यायालयों द्वारा अपराधियों को दोष मुक्त कर दिए जाने से गवाहों का मनोबल टूटता है और आम धारणा को बल मिलता है कि परिवार में हुए अपराध में किसी पर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं है। व्यभिचार रोकने के लिए बने कानून भारतीय दंड संहिता 1860 में अंतर्निहित धारा 417 स्त्री को पीड़ित तथा निष्क्रिय भागीदार मानती है। इस रूप में उसे सुरक्षा की आवश्यकता है। कानूनी सुरक्षा की इस प्रक्रिया में उसकी असमानता का प्रश्न गौण हो जाता है। पत्नी अपने व्यभिचारी पति या उसकी प्रेमिका के विरुद्ध याचिका दायर नहीं कर सकती है। साथ ही कुंवारी लड़की के साथ पति के यौन रिश्तों को भी कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। इस प्रावधान के पीछे यह धारणा झलकती है कि पत्नी पति की संपत्ति है, इसलिए पत्नी को पति का सदैव से यौन संबंध रखने से रोकने का कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायालय द्वारा आदर्श हिंदू पत्नी के लिए मापदंड को लागू करते हुए अक्सर स्त्री को पति की इच्छा का पालन करने के लिए नौकरी छोड़कर उसके साथ रहने का आदेश देता है, क्योंकि आदर्श पत्नी हिंदू पत्नी के लिए पति की इच्छा ही सर्वोपरि है। वेश्यावृत्ति रोकने संबंधी कानूनों में भारतीय दंड संहिता के 20वें अध्याय की धारा 498 के अनुसार किसी भी विवाहित स्त्री को आपराधिक इरादों से रोकना, बहकाना तथा फुसलाना गैरकानूनी है। अदालत ने इस धारा को पुरुष को पत्नी पर पूर्ण अधिकार के रूप में व्याख्या दी है। पत्नी के अपने दुराचारी तथा अत्याचारी पति को छोड़कर अपने स्वेच्छा से दूसरे पुरुष के साथ रहने की स्थिति में भी दूसरे पुरुष को ही दंडित किया गया है, क्योंकि धारा 497 498 पति के अधिकारों को कानूनी संरक्षण देती है, न कि पत्नी के। इसी प्रकार बलात्कार, व्यभिचार तथा अपहरण को अपराध इसलिए घोषित किया गया है ताकि पुरुष के स्त्री पर अधिकार को दूसरे पुरुष के अतिक्रमण से बचाया जा सके। इसका स्त्री के अधिकारों के संरक्षण से कोई वास्ता नहीं रहा। जिस स्त्री पर किसी पुरुष का स्वामित्व नहीं है, वह अक्सर कानूनी संरक्षण से भी वंचित कर दी जाती है। यह बलात्कार के मामले में अदालतों के कई फैसलों से साफ हो जाता है। गरीब, निम्न जाति और निम्न वर्गों की स्त्रियों को भी बलात्कार के मामले में न्याय नहीं मिलता है। वेश्यावृत्ति से संबंधित कानून यौन रिश्तों में दोहरे मापदंड की कानूनी संरक्षण देने के अहम उदाहरण है। वेश्यावृत्ति परिवार संस्था के लिए खतरनाक होता है। 1975 में विधि आयोग ने अपनी 64वीं रिपोर्ट में साफ लिखा कि वेश्या के धंधे को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए दुनिया के हर देश में इसे सुरक्षित सीमा तक नियंत्रित करने के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं, ताकि यह विवाह एवं परिवार संस्था के लिए खतरनाक साबित न हो। इस प्रकार जिस्म बेचना गैर कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है वेश्यालय चलाना, वेश्या की आय पर निर्भर रहना तथा सार्वजनिक स्थलों पर वेश्या का धंधा करना तथा लड़कियों को बहला फुसला कर वेश्यावृत्ति में लाना। कानून वेश्या को तो अपराधी बनाता है, पर उसके पुरुष ग्राहक को नहीं बनाता। विधि आयोग ने ग्राहक को अपराधी बनाने की मांग को ठुकरा दिया। आयोग की दलील की कि यह सेवा गैरकानूनी अवश्य है, किंतु किसी भी ऐसे अपराध के लिए जिसका राजनीतिक महत्व नहीं है, समाज में बड़े हिस्से को दंडित करना उचित नहीं होगा। वेश्यालय जाने वाले लोग नागरिक, व्यापारिक, सरकारी, धार्मिक तथा पारिवारिक मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अतः इनको दंडित करने से उपरोक्त सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं। यह कानून यौन असमानता की जड़ पर प्रहार नहीं करता। इसका उद्देश्य लिंग विशेष के साथ हो रहे अन्याय को दूर करना नहीं है, यह तो केवल लिंग विशेष के साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए बना है। इससे स्त्री तथा उनके यौन आरक्षण के बारे में पितृसत्तात्मक प्रक्रियावादी कट्टरपंथी अवधारणा को ही बल मिला है। मगर असली बचाव यह है कि पुरुष क्यों ऊपर से दिखने वाले कठोर कानूनों से बचाव का कोई रास्ता खोज लेते हैं, और स्त्री क्यों अपने पक्ष के कानूनों के बावजूद उनसे वंचित ही रहती है। इस सवाल का उत्तर सीधे भारतीय औरतों के सामाजिक आर्थिक हैसियत में छुपा हुआ है। जिन बेड़ियों में औरतें जकड़ी हुई हैं, वे आर्थिक बेड़ियाँ हैं। जब तक औरतें इन बेड़ियों को काट कर स्वतंत्र नहीं होंगी, हर नया कानून पुरुष के हक में जाता रहेगा। संदर्भ: एफ अग्नेस, ला एंड जेंडर, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली। साधना आर्य तथा अन्य, 2006। नारीवादी राजनीतिक संघर्ष एवं मुद्दे, हिंदी मध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। रत्ना कपूर तथा अन्य, सबर वी वेबसाइट, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली। जोशी गोपी, भारत में स्त्री असमानता, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। ए आर देसाई, जेंडर रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लतिका सरकार, संपादिका, वुमेन एंड लॉ, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।